नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत, इस पर बात करेंगे
जी।
और खास तौर पर इसके एक अध्याय ऋषि तंत्र से दुर्गम हिमालय में साक्षात्कार।
हाँ, ये अध्याय सच में बहुत खास है। पूज्य गुरुदेव के हिमालय प्रवास का एक कह सकते हैं अलौकिक अनुभव इसमें दर्ज है।
बिल्कुल, ये सिर्फ एक यात्रा का वर्णन नहीं है, इसमें तो जैसे सूक्ष्म जगत के कई रहस्य खुलते हैं।
सही कहा, सिद्धियों की बात है, दिव्य प्रयोजनों की बात है।
और शुरुआत ही देखिए कितनी रोमांचक है। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि उनके जो मार्गदर्शक गुरु थे, दादा गुरु, वो उन्हें एक रात ले गए। पूर्णिमा की रात थी।
जी हाँ, पूर्णिमा की रात।
और बर्फीला हिमालय जो है वो चांदनी में सोने जैसा चमक रहा है।
हाँ।
और कमाल की बात ये कि वो जमीन से कुछ ऊपर उठकर हवा में तैरते हुए जा रहे हैं।
हाँ, ये पढ़कर ही अचरज होता है,
है ना? मतलब ये तो हमारे रोजमर्रा के अनुभव से बिल्कुल परे की बात है।
बिल्कुल। और पूज्य गुरुदेव खुद लिखते हैं कि ऐसी यात्रा के लिए योग की सिद्धियों की जरूरत पड़ती है, ये साधारण मानव शरीर के बस की बात नहीं।
अच्छा,
तो वो सिद्धियों के सहारे ही उस दुर्गम क्षेत्र तक पहुँचे जहाँ आम साधनों से जाना तो मतलब संभव ही नहीं है।
हाँ, दुर्गम हिमालय
जी। और दादा गुरु का उद्देश्य क्या था? वो पूज्य गुरुदेव को हिमालय में तपस्या करने वाले जो प्राचीन ऋषि हैं उनकी तपस्थलियों को दिखाना चाहते थे, उनसे मिलवाना चाहते थे।
मिलवाने, और वहाँ पहुंचकर उन्होंने जो देखा वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। कई गुफाएं थी।
हाँ।
और उनमें सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि ध्यान में बैठे थे। ये सूक्ष्म शरीरधारी, इस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे, ये क्या होता है?
हाँ, ये जानना जरूरी है। देखिए, हमारा जो अध्यात्म है, योग दर्शन है, वो मानता है कि चेतना सिर्फ इस दिखने वाले शरीर, स्थूल शरीर तक ही सीमित नहीं है।
अच्छा,
इसके परे ऊर्जा के और चेतना के स्तर हैं। सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। तो जब स्थूल शरीर छूट जाता है मृत्यु के बाद, तब भी जो उन्नत आत्माएं हैं वो अपने सूक्ष्म या कारण शरीर में रह सकती हैं।
ओहो,
लंबे समय तक। तो ये ऋषिगण वही थे, उन्होंने स्थूल शरीर त्याग दिया था, पर अपनी तपस्या और संकल्प के बल पर वो सूक्ष्म रूप में वहां थे, लोक कल्याण के लिए साधना कर रहे थे।
मतलब भौतिक रूप में नहीं, पर उनकी चेतना वहां पूरी तरह सक्रिय थी।
बिल्कुल सक्रिय थी। और देखिए, पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि वो ऋषि ध्यान में थे, फिर भी उन्हें इनके आने का पता चल गया था पहले से।
हाँ, ये भी अद्भुत है।
उन्होंने कोई बातचीत नहीं की, बस संकेत से, जैसे हल्की मुस्कान से या सिर झुकाकर अभिवादन का जवाब दिया।
और बातचीत का तरीका भी तो अलग था, परा और पश्यंती वाणी।
हाँ, परा और पश्यंती,
यानी बिना शब्दों के, मन में ही प्रेरणा के रूप में।
जी बिल्कुल, सूक्ष्म जगत में संवाद ऐसे ही होता है। वहाँ हमारे जैसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। विचार या भाव जो हैं, वो सीधे एक मन से दूसरे मन तक पहुँच जाते हैं।
कमाल है। लेकिन ये जो परिचय कराया गया है, इसका मकसद सिर्फ दर्शन कराना तो नहीं रहा होगा? जैसा आपने कहा, कोई गहरा प्रयोजन था।
निश्चित रूप से, दादा गुरु ने ये साफ किया कि ये परिचय इसलिए कराया जा रहा है ताकि पूज्य गुरुदेव इन सिद्ध ऋषियों की बिरादरी में, उनके समूह में एक तरह से शामिल हो जाएं।
शामिल हो जाएं? क्यों?
ताकि भविष्य में अगर इन ऋषियों के कोई लोक कल्याण के काम अधूरे रह गए हों या कोई संकल्प हो, तो वो पूज्य गुरुदेव के स्थूल शरीर को माध्यम बनाकर उन्हें पूरा कर सके।
अच्छा, तो पूज्य गुरुदेव एक तरह से उन ऋषियों के लिए एक माध्यम, एक चैनल बनने वाले थे।
हाँ, कह सकते हैं ये दिव्य शक्तियों का एक तरह से समन्वय था एक बड़े उद्देश्य के लिए।
और इसमें एक खास हिदायत भी दी गई थी, जहाँ तक मुझे याद है।
हाँ, बहुत महत्वपूर्ण निर्देश था वो, ये कि जैसे पूज्य गुरुदेव अपनी मर्जी से दादा गुरु से संपर्क नहीं करते थे, जरूरत होने पर दादा गुरु ही मार्गदर्शन देते थे
जी,
वैसे ही इन हिमालयवासी ऋषियों से भी खुद संपर्क करने की कोशिश कभी ना करें।
अच्छा, मतलब अपनी तरफ से नहीं?
बिल्कुल नहीं। जब भी उन ऋषियों को कोई काम लेना होगा या कोई संदेश देना होगा, वो खुद ही प्रेरणा के रूप में या किसी और तरीके से पूज्य गुरुदेव तक अपनी बात पहुंचा देंगे।
ये बड़ी बात है। ये दिखाता है कि साधक की उत्सुकता से ज्यादा महत्व दिव्य प्रयोजन का है।
सही कहा।
ये दिव्य विधान का सम्मान है। संपर्क उनकी इच्छा और जरूरत पर निर्भर करेगा, हमारी इच्छा पर नहीं।
तो कुल मिलाकर देखें तो ये अनुभव पूज्य गुरुदेव के लिए सिर्फ एक दर्शन यात्रा नहीं थी, ये उनके आध्यात्मिक जीवन और जो उनका मिशन था उसे एक बहुत बड़ा पड़ाव था।
बिल्कुल।
उन्हें एक बहुत बड़े अदृश्य लेकिन शक्तिशाली आध्यात्मिक नेटवर्क का हिस्सा बना दिया गया।
हाँ।
और ये घटना ये भी दिखाती है कि हमारा ये स्थूल जगत और वो जो सूक्ष्म जगत है वो बिल्कुल अलग थलग नहीं है,
उनमें जुड़ाव है,
गहरा संबंध है। और ऊपर के लोकों की शक्तियां पृथ्वी पर अपने काम करने के लिए सही माध्यमों का इस्तेमाल कर सकती हैं। पूज्य गुरुदेव के विराट मिशन की ये एक झलक है।
ये सारी चर्चा वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है।
हाँ, सोचने वाली बात तो है ही कि क्या आज भी हमारे इस स्थूल जगत के परे चेतना के ऐसे आयाम, ऐसे लोक हैं जहाँ से हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है, ऊर्जा मिलती रहती है। और अगर है तो क्या आज भी ऐसे माध्यम हो सकते हैं जो उन ऊंचे लोकों और हमारे बीच एक पुल का काम करे, भले वो हमारी आम नजरों से ओझल हो? ये एक गहरा प्रश्न है।